सोने की दूसरी हवा, दुनिया के सबसे पुराने पैसे के पीछे का संरचनात्मक तर्क। गोल्ड ने 1979 के बाद अपना सबसे अच्छा साल बिताया, करीब $5,600 को छुआ, फिर $4,350 के आसपास ठहर गया। कीमत के डगमगाने से परे देखें तो इंजन रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक खरीद, वह खरीदार जिसने सब कुछ बदल दिया। बीती सदी के अधिकांश समय में गोल्ड की कीमत हाशिए पर आभूषण की मांग और वास्तविक ब्याज दरों पर प्रतिक्रिया देते पश्चिमी निवेशकों से तय होती थी। 2022 से एक तीसरी ताकत हावी हो गई है, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स। आधिकारिक क्षेत्र की शुद्ध खरीद 2022 में 1,136 टन, 2023 में करीब 1,051 और 2024 में लगभग 1,045 टन रही, लगातार 3 साल 1,000 टन से ऊपर, और यहां तक कि धीमे 2025 में भी 863 टन खरीदे गए। यह शुद्ध खरीद का लगातार 16वां साल और 2010 से 2021 के लगभग 473 टन प्रति वर्ष के औसत का लगभग दोगुना है। 2026 की पहली तिमाही ने और 244 टन जोड़े और अप्रैल में खरीद और 17 टन के साथ फिर शुरू हुई, जिसका नेतृत्व पोलैंड ने किया, जिसका भंडार बढ़कर करीब 595 टन हो गया है, और चाइना ने, जिसके सेंट्रल बैंक ने अब लगातार 18 महीनों तक खरीद की है। मकसद रणनीति है, ट्रेडिंग नहीं। 2022 में रशिया के डॉलर भंडार जमा कर दिए जाने के बाद देशों की एक लंबी होती सूची चुपचाप डॉलर से दूर विविधीकरण कर रही है, और गोल्ड ही एकमात्र रिजर्व संपत्ति है जिस पर किसी और देश की देनदारी नहीं होती। प्लस गुट के भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी 2019 के लगभग 11% से बढ़कर 17% से ऊपर पहुंच गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सेंट्रल बैंक्स के 2025 सर्वेक्षण में रिकॉर्ड 43% ने कहा कि वे आगामी वर्ष में गोल्ड जोड़ने का इरादा रखते हैं। 95% को उम्मीद है कि आधिकारिक गोल्ड भंडार बढ़ते रहेंगे और 73% को उम्मीद है कि वैश्विक भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी और गिरेगी। यह ऐसी मांग है जो कीमतें गिरने पर और खरीदती है और बढ़ने पर भी खरीदती रहती है, जो किसी बुलबुले के बिल्कुल उलट है। वह आपूर्ति जो जवाब नहीं दे सकती। बही खाते के दूसरी ओर गोल्ड की आपूर्ति उल्लेखनीय रूप से बेलोचदार है। खान उत्पादन 2025 में करीब 3,672 टन पर पहुंचा, एक रिकॉर्ड, लेकिन यह एक दशक से सालाना 1% से भी कम बढ़ा है, और उद्योग इसे अपने शब्दों में पीक गोल्ड कहता है। 1,404 टन की रिसाइकलिंग के साथ मिलकर कुल आपूर्ति 2025 में पहली बार 5,000 टन के पार गई, और फिर भी वह रिकॉर्ड मुश्किल से मांग के साथ कदम मिला पाया। उल्लेखनीय रूप से औसत कीमत में 44% की उछाल के बावजूद रिसाइकलिंग केवल 3% बढ़ी, और कबाड़ का दराज बाजार में वैसे नहीं उमड़ा जैसे पिछली तेजियों में उमड़ा करता था। गणित सरल और शक्तिशाली है, जब नई रणनीतिक मांग की एक लहर ऐसी आपूर्ति से टकराती है जो भौतिक रूप से तेजी से नहीं बढ़ सकती, तो समायोजन कीमत के जरिए ही आना पड़ता है। 2025 ठीक यही था। पीठ पर मैक्रो की हवा। इस संरचनात्मक केंद्र के इर्द गिर्द चक्रीय अनुकूल हवाएं बैठी हैं और अधिकांश आज भी उसी दिशा में बहती हैं। 2026 का पश्चिम एशिया युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मस संकट ने गोल्ड को एक नया जोखिम प्रीमियम दिया, और हमलों के बाद के दिनों में यह $5,200 से ऊपर उछल गया। उसके नीचे गहरी कहानी मौद्रिक है। अमेरिकी संघीय कर्ज 2026 में $39 ट्रिलियन के पार गया और लगभग $2 ट्रिलियन प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, और खींचे हुए सरकारी बही खातों की दुनिया में ऐसी संपत्ति जिसे छापा नहीं जा सकता का आकर्षण स्पष्ट है। उल्लेखनीय रूप से डॉलर के साथ गोल्ड का पुराना विपरीत संबंध कमजोर पड़ा है, और डॉलर इंडेक्स के साथ इसका 30 दिन का सहसंबंध सामान्य 0.45 से ढीला होकर लगभग 0.25 पर आ गया है, ठीक वैसा ही जैसी आप उम्मीद करेंगे जब हाशिए का खरीदार वास्तविक दरों पर खेलता ट्रेडर नहीं बल्कि भंडार विविधीकृत करता एक सेंट्रल बैंक हो। मांग ने 2025 में कहानी कह दी, कुल मांग का मूल्य रिकॉर्ड $555 बिलियन पर पहुंचा, 45% की वृद्धि, भौतिक बार और सिक्के की मांग 1374 टन के 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंची और गोल्ड ETF ने वर्षों के बहिर्वाह के बाद 801 टन वापस जोड़े। यह गति 2026 में जारी रही, पहली तिमाही की मांग रिकॉर्ड $193 बिलियन मूल्य की थी, एक साल पहले की तुलना में 74% अधिक, जिसमें अकेले चीनी खुदरा मांग रिकॉर्ड 207 टन रही। हाल की डगमगाहट भी प्रवाह में दिखती है, गोल्ड ETF में मई 2026 में लगभग $2 बिलियन का मामूली बहिर्वाह हुआ और करीब 4,121 टन की होल्डिंग फरवरी के रिकॉर्ड 4,176 टन से जरा ही कम है। यह एक विराम है, पलायन नहीं, और साल दर तारीख प्रवाह अब भी लगभग $17 बिलियन के सकारात्मक स्तर पर है। आगे का तर्क कैसा दिखता है? इसमें से कोई बात सीधी रेखा का संकेत नहीं देती, गोल्ड पहले ही दिखा चुका है कि वह हफ्तों में किसी शिखर से 20% से अधिक गिर सकता है, लेकिन समेकन के बाद सेल साइड की चौंकाने वाली बात यह है कि उसके लक्ष्य आज भी आज की कीमत से कितने ऊपर बैठे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका का बारह महीने का लक्ष्य $6,000 है, UBS $6,200 पर पहुंच गया है, वेल्स फार्गो 6,106,300 देखता है, JP मॉर्गन 2026 की चौथी तिमाही के लिए लगभग $6,000 का मॉडल बनाता है जो 2027 के अंत तक $6,300 की ओर बढ़ता है। यहां तक कि अधिक रूढ़िवादी संस्थान भी $5,000 के पास या उससे ऊपर बैठे हैं और गोल्डमन सैक्स ने जोखिमों के संतुलन को असममित रूप से ऊपर की ओर झुका हुआ बताया है। अधिक आक्रामक परिदृश्य, भूराजनीतिक तनाव बढ़ने पर UBS का $7,200 और डॉलराइजेशन में तेजी पर 2027 तक बैंक ऑफ अमेरिका का $8,000 दिखाते हैं कि पूंछ कहां है। उतना ही अहम, बाजार भीड़भाड़ वाला नहीं है, कॉमेक्स पर सट्टा शुद्ध लॉन्ग पोजिशनिंग पिछले चरम स्तरों का एक अंश है और निजी निवेशक अब भी अपनी संपत्ति का अनुमानित 0.5% गोल्ड में रखते हैं। यह गुंजाइश है, झाग नहीं। भारत का नजरिया, एक भारतीय निवेशक के लिए गोल्ड का तर्क दोगुना सम्मोहक है क्योंकि गिरता रुपया चुपचाप रिटर्न को बढ़ा देता है। जो गोल्ड डॉलर में बढ़ता है वह रुपए में और अधिक बढ़ता है, खुदरा 24 कैरेट कीमतें जनवरी के अंत में करीब 1,78,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड को छू गईं। MCX फ्यूचर्स कुछ देर के लिए 1,93,000 रुपए के करीब ट्रेड हुए और वैश्विक गिरावट के बाद भी मध्य जून में करीब 1,51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गोल्ड एक साल पहले की तुलना में अब भी लगभग 48% ऊपर था। जिन दिनों वैश्विक गोल्ड गिरा, कमजोर रुपए ने गिरावट को नरम कर दिया। भारत का अपना व्यवहार आभूषण से संपत्ति की ओर इस बदलाव को दर्शाता है, 2026 की पहली तिमाही में निवेश मांग 54% उछली जबकि आभूषण गिरा और गोल्ड ETF की प्रबंधनाधीन संपत्ति वित्त वर्ष में लगभग 191% बढ़कर करीब 1.71 रुपया लाख करोड़ हो गई, जिसमें अकेले जनवरी 2026 ने लगभग 2.5 बिलियन का रिकॉर्ड मासिक प्रवाह खींचा। वाहन भी बदल गए हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के फरवरी 2024 से प्रभावी रूप से रुक जाने के साथ ETF, गोल्ड फंड और डिजिटल गोल्ड इसे रखने के अधिक साफ सुथरे तरीके बन गए हैं, मेकिंग चार्ज और भंडारण की चिंताओं से मुक्त। RBI के पास खुद करीब 880 टन है, वही विविधीकरण का तर्क घर पर अमल में लाया गया। यह मानक मार्गदर्शन की गोल्ड पोर्टफोलियो में 5-15% का रणनीतिक स्थान रखता है। इन साक्ष्यों पर सावधानी से कम और सामान्य समझ जैसा अधिक लगता है। ईमानदार चेतावनियां। एक सकारात्मक नजरिया अंधा नजरिया नहीं होता। गोल्ड का अपने जनवरी के उच्च स्तर से 22% फिसलना एक याद दिलाता है कि भीड़भाड़ वाला उत्साह तेजी से खुल सकता है और संरचनात्मक कहानी के लिए सबसे स्पष्ट खतरा अमेरिकी मुद्रास्फीति का सचमुच फिर से तेज होना है, जो फेडरल रिजर्व को वापस दर वृद्धि की ओर धकेले और डॉलर को ऊपर उठाए। यही वह संयोजन है जिसने ऐतिहासिक रूप से गोल्ड को चोट पहुंचाई है। भारत में मई 2026 में आयात शुल्क का 15% तक तीखा बढ़ना एक घरेलू अवरोध जोड़ता है और आभूषण मांग को कमजोर कर सकता है। और 65% वाले साल के बाद कुछ वापसी स्वाभाविक है, लेकिन इनमें से कोई भी केंद्रीय तथ्य को नहीं बदलती। इस धातु को ऐसे खरीदार जमा कर रहे हैं जो कीमत के बजाय रणनीति के प्रति जवाबदेह हैं, और उनके सामने ऐसी आपूर्ति है जो उनसे मिलने के लिए बढ़ नहीं सकती। सार: महीने दर महीने के शोर को हटा दें तो गोल्ड की कहानी असामान्य रूप से स्पष्ट है। इसकी 2025 की दौड़ कोई फूलता बुलबुला नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक रीरेटिंग थी जिसका नेतृत्व उन सेंट्रल बैंक्स ने किया जो मौद्रिक व्यवस्था को ऐसी संपत्ति के इर्द गिर्द फिर से गढ़ रहे हैं जिसका कोई सरकार अवमूल्यन नहीं कर सकती, और सामने ऐसी आपूर्ति है जो प्रभावी रूप से चरम पर पहुंच चुकी है। हाल के विराम ने पोजिशनिंग को ठंडा किया है और अपेक्षाओं को फिर से सेट किया है बिना उस सब को छुए। प्रमुख खरीदारों के अब भी खरीदते रहने, आपूर्ति के अब भी अटके रहने और अधिकांश विश्लेषक समुदाय के अब भी $6,000 और उससे आगे की ओर इशारा करते रहने के साथ साक्ष्यों का भार मजबूती से सकारात्मक पक्ष पर बैठा है, और एक रुपया आधारित निवेशक के लिए मुद्रा आपका कुछ काम खुद कर देती है। यह निवेश सलाह या गोल्ड या किसी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। कीमतें अनुमान और विश्लेषकों के विचार संदर्भ के लिए बताए गए हैं और तेजी से बदल सकते हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया एक पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।